ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सूर्य उपासना के पर्व छठ पर्व का शुरू हुई तैयारी। जाजरकोट भूकंप पीड़ितों के लिए यूरोपीय संघ ईयू करेगा 28 करोड़ 80 लाख रुपए का सहयोग। और चीन के कोयला प्लांट में हुई भीषण आग लगी, 25 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। देश भर ही निष्ठा के साथ चार दिनों तक मनाए जाने वाला छठ पर्व की तैयारी शुरू हो रही है। जनकपुर सहित छठ मनाए जाने वाले स्थानों में दीपावली के त्योहार संपन्न होते ही पोखरी, ताल, तलैया और जलाशय का सर सफाई करके और इसके अतिरिक्त के काम शुरू हो चुकी है। छठ की तैयारी मिथिला में एक महीना अगाड़ी से ही किया जाता है। बता दें कि कुछ साल पहले ये पर्व सिर्फ मदेशी मूल के हिन्दुओं ने मनाते आ रहे थे, तो वहीं अब पर्वत मूल के हिंदू लोगों ने भी मनाने लगे हैं। इस कारण छठ पर्व को साझा पर्व माना जाता है। यूरोपीय संघ ईयू ने जाजरकोट भूकंप से प्रभावितों के सहयोगार्थ 28 करोड़ 80 लाख रुपए प्रदान करेगी। ईयू ने मानवीय सहायता स्वरूप वह रकम प्रदान करने का निर्णय किया है। आवास, पेयजल, सरसफाई में पहुंच सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवा के निमित्त जाजरकोट भूकंप पीड़ितों को मानवीय सहायता स्वरूप वह रकम प्रदान करने का निर्णय हुआ है। यह जानकारी काठमांडू स्थित यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने दी। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस तथा रेड क्रिसेंट महासंघ ने नेपाल रेडक्रॉस सोसायटी के मार्फत मानवीय सहायता परिचालन करेगी। गोरखा के पालिकाओं ने जाजरकोट और रुकुम पश्चिम के भूकंप प्रभावितों के लिए आर्थिक सहयोग करेगी। भूकंप प्रभावितों के पुनर्स्थापना में सहयोग होने के हिसाब से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जानकारी गोरखा नगर पालिका के प्रमुख कृष्ण राणा मगर ने दी। जिला में रहे 11 पालिकाओं में से 9 गांव पालिकाओं से 1-1 लाख रूपये, 2 नगर पालिकाओं से 1,50,000 के दर से 3 लाख कर कुल 12 लाख उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है। ये जानकारी समन्वय समिति के प्रमुख मोहन बहादुर थापा मगर ने दी। नेपाल सरकार के प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए मैं जितना सकूंगी उतना पहल करूंगी। दांगकी बंगलासुली गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के बचनी में स्थानीय मतदाताओं के साथ भेंटघाट के दौरान उन्होंने कहा कि विकट क्षेत्र के जनता को विकास के प्रत्याभूति दिलाने के हिसाब से काम हो रही है। मंत्री शर्मा ने कहा कि निर्वाचन के दौरान जनता से की गई प्रतिबद्धता के अनुसार सड़क, पेयजल, संचार, लगायतों के विकास निर्माण के काम हो रही है और अब के दिनों में और भी काम होगी। त्योहार में ताश, लंगूर, बुर्जा और जुआ खेलने के अभियान में 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उन लोगों के पास से 34,62,000 से अधिक रकम बरामद किया है। इसी कार्तिक 11 गते से आज सुबह तक काठमांडू के 13, ललितपुर के 4 और भक्तपुर के 2 स्थानों से जुआ ताश खेलते हुए पाए जाने के बाद उन लोगों को गिरफ्तार कर काठमांडू घाटी के पुलिस ने जानकारी दी है। इसी तरह इसी अवधि में काठमांडू घाटी में 14 स्थानों में आग लगी हुआ और इससे 8,77,45,000 रूपये बराबर के क्षति हुआ है, ये जानकारी पुलिस ने दी। इसी तरह इस अवधि में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 330 लोग घायल हुए हैं। इसी तरह करीब 1 करोड़ बराबर के धनमाल की चोरी हुआ है और शंकास्पद 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14 हास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। असम में टेम्पू दुर्घटना होने से दो लोगों की मौत हो गई और वहीं चार लोग घायल हो गए। बाजार से दिल्ली की ओर जा रही टेम्पू कल रात मध्य पहाड़ी राजमार्ग अंतर्गत टोटके साल में हुए दुर्घटना में पड़के घायल होने वालों में कमल बाजार नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के टेम्पू चालक जनक खड़का की मौत हो गई। ये जानकारी प्रहरी नाबू परीक्षक संतोष पाठक ने दी। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर परिवर्तन को गति बढ़ाउँदै के नारे के साथ नेपाल सहित विश्व शौचालय दिवस 2023 मनाया जाएगा। हर साल 19 नवंबर के विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ शौचालय दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हुए शहरीकरण और सार्वजनिक खुला स्थानों के अभाव के कारण शहरी क्षेत्र व घना मानव बस्ती के स्थानों में शौचालय का निर्माण और प्रयोग करने की चुनौती बढ़ती जा रहा है। आज इस दिवस के संदर्भ में ललितपुर में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पूर्व मंत्री एवं नेकपा माओवादी केंद्र के सचिव गणेश शाह ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य खुद के रहने वाला वातावरण के साथ अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ है, इसलिए सरसफाई का महत्व देना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में आज एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। यहां की लुलियांग के उत्तरी शांगसी प्रांत में एक कोयला कंपनी की इमारत में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। इमारत में आग लगनी इतनी ज्यादा थी कि लोगों को बचाना भी मुश्किल हो गया। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क के सबसे बड़े कोयला उत्पादक केंद्र शांगसी में 4 मंजिला युंगजू कोयला उद्योग के इस इमारत में सुबह 6:50 पर आग लगी थी। शुरुआत में पता चला था कि आग में 11 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 51 लोग घायल हो गए। इसके बाद दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई। आग लगने के कारण की अभी भी जांच चल रही है, हालांकि कोयला उद्योग ने अभी कारण नहीं बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चीनी समकक्षी शी जिनपिंग के साथ सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात की। 6 सालों के बाद शी जिनपिंग ने अमेरिका पहुंचे थे। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी के नेताओं की बैठक में भी शी जिनपिंग ने हिस्सा लिया। दोनों ही देश अपने रिश्तों को सुधारने और अवैध फेंटेनाइन से निपटने के लिए भी सहमत हुए हैं। वहीं सैन्य संचार को दोबारा स्थापित करने पर रजामंदी दिखाई। बाइडेन से बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने कहा, दोनों देशों की सफलता के लिए दुनिया काफी बड़ी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग से कहा, मुझे लगता है कि यह सबसे जरूरी है कि एक दूसरे को स्पष्ट रूप से समझे बिना किसी गलत फहमी के। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिस्पर्धा संघर्ष में न बदल जाए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूर्य उपासना के पर्व छठ पर्व का शुरू हुई तैयारी। जाजरकोट भूकंप पीड़ितों के लिए यूरोपीय संघ ईयू करेगा 28 करोड़ 80 लाख रुपए का सहयोग। और चीन के कोयला प्लांट में हुई भीषण आग लगी, 25 लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।